परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरम्भ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज हमारे इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 33 से आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी आशीष प्रदान करें, उन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ दें ताकि जब हम आपके वचन को सुने सीखें तो हम समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार हम चलने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से और शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप हमारे श्रोता भाई बहनों की रक्षा करें। इस घड़ी फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय को निकाल लीजिए और इस अध्याय का विषय होगा यहेजकेल की पुनः नियुक्ति। जी हां, अध्याय 33 से इस पुस्तक का अंतिम भाग आरंभ होता है। अध्याय 33 से 48 में हम परमेश्वर की महिमा, भावी प्रभु राज को देखेंगे। अध्याय 32 में इसराइल के पड़ोसी राज्यों की भविष्यवाणियां थी। इनमें से कुछ देश तो इसराइल की सीमा से जुड़े हुए थे, कुछ तो उनके खून के संबंधी भी थे। ये भविष्यवाणियां यरूशलेम के विनाश से पूर्व की थी। अब यरूशलेम के पतन के बाद की भविष्यवाणियों का भाग आरंभ होता है। यहेजकेल फिर से यरूशलेम के संबंध में कहता है और इसराइल देश उसकी विषय वस्तु है, परंतु अब उसका संदेश भिन्न है। अध्याय 25 तक तो वह यरूशलेम के विनाश की ही बातें कर रहा था और उसकी भविष्यवाणी के अनुसार ही यरूशलेम नष्ट किया गया। अब वह भविष्य में सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज को देखेगा जब परमेश्वर की महिमा फिर से पृथ्वी पर प्रकट होगी। अतः यह एक अति रोचक अध्याय है। मेरे प्रियो, यहाँ यहेजकेल की बुलाहट का नवनीकरण ही नहीं होगा, उसकी प्रशंसा भी की जाएगी कि उसने अब तक अच्छा काम किया है। अब से आगे वह बंधुआ इसराइलियों को ही संदेश देगा कि वे भविष्य की आशा में जीवन जिएं। इससे पूर्व इन बंधुए इसराइलियों में पाप के कारण आशा नहीं थी, परंतु यहेजकेल उनके लिए भविष्य में आशा देखता है। मेरे मित्रों, आज विश्वासियों को भी आशा है जो मनुष्य के कार्यों के कारण नहीं या मनोविज्ञान के अभ्यासों के द्वारा नहीं है। हमारी आशा कोई दार्शनिक विचार नहीं है, वह परमेश्वर के वचन पर आधारित है और भविष्य के लिए परमेश्वर द्वारा कही गई बातों पर आधारित है। यह आज परमेश्वर की संतान के लिए पथ प्रदर्शक सिद्धांत है। यह इसराइल द्वारा सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज्य की ओर अग्रसर होने जैसी नहीं है। हम वास्तव में नए यरूशलेम की ओर अग्रसर हैं। यह एक विश्वासियों के तुरंत सामने है। मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे यहेजकेल की पुनः नियुक्ति। यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय के एक पद में लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहेजकेल के लिए यह एक प्रचार से रिकॉर्ड का अटकना है। वह हमें लगातार स्मरण कराना चाहता है कि वह अपना विचार या कल्पना नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सुना रहा है। यहेजकेल के पुस्तक 33 अध्याय के 2 और 3 पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहेजकेल की सेवा में उसे दी गई नियुक्ति को दोहराता है। वह उसे नगर के पहरुए के तुल्य कहता है। उस युग में मुख्य शहरों को शहरपनाहों द्वारा सुरक्षित किया जाता था, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा है। राजा उन दीवारों पर पहरवे बैठाता था कि वे रात भर शत्रुओं का ध्यान रखें। यदि वहां अंधकार में शत्रु दिखाई ना दे तो उन्हें पुकारना होता था, सब ठीक है। रोचक बात तो यह है कि झूठे भविष्यद्वक्ता शत्रु के आगमन पर भी पुकार रहे थे कि सब ठीक है। वे उसे देखने में अंधे थे। यहेजकेल एक निष्ठावान पहरुआ था जो उन्हें सचेत कर रहा था कि शत्रु बेबीलोन आ रहा है। यहेजकेल 33 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। अब उन्हें पाप का दंड मिलेगा। पहरुआ यदि चेतावनी ना दे तो उसे उत्तरदायी माना जाएगा। यहेजकेल ने तो उन्हें चेतावनी दे दी थी, परंतु झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने नहीं दी थी। यहेजकेल ने अपना उत्तरदायित्व निभाया था। यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय के 7 पद में लिखा है, इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यहेजकेल ने अपने इस बुलाहट को पूरा किया और इतना ही नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाया। यहेजकेल 33 के 8 पद में लिखा है, यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। मेरे मित्रों, पहरुए का उत्तरदायित्व है कि वह दुष्टों को चिताए कि वे दंड पाएंगे। यद्यपि वे यहेजकेल की चेतावनी स्वीकार नहीं करते थे, वह निष्ठापूर्वक उन्हें चिता रहा था। चेतावनी की पुकार लगातार ही पहरुआ अपने आप को निर्दोष ठहराता है। आज परमेश्वर के वचन के शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं कि वह परिणाम देखे। लोग कहते हैं, हमें ऐसा प्रचारक चाहिए जो परिणाम दिखाए। किसी सभा में मनुष्यों को सामने ले आना महत्व नहीं रखता है। मनुष्य को परमेश्वर का वचन सुनाना ही महत्वपूर्ण बात है। मैं सामने आने वालों को नहीं, आशीर्वाद के बाद बाहर निकलने वालों को देखता हूं। क्या उन्हें चेतावनी दी गई है? यही हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। हम गलत जनसमूह को देख रहे हैं। जी हाँ, हम कहते हैं, प्रचारक ने कैसा मधुर निमंत्रण दिया था और कितने लोग सामने गए। वहां निर्णय तो वास्तव में लिए नहीं गए, परंतु अभियान चलता रहा। उफ, मेरे प्रियो, हम सुनिश्चित करें कि श्रोताओं को उचित चेतावनी दी गई है। यदि उसे चेतावनी नहीं दी गई है तो वक्ता को लेखा देना पड़ेगा। उसे अपने उत्तरदायित्व में कमी का लेखा प्रभु को देना होगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। यहेजकेल 33 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इसराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। इस पद से स्पष्ट है कि परमेश्वर दंड देना नहीं चाहता है। यशाया कहता है कि दंड देना परमेश्वर का विचित्र काम है। परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता है। वह उनसे निवेदन करता है कि वे उसकी ओर फिरें और जीवन को प्राप्त करें। यहेजकेल 33 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जी हाँ, इसराइली शिकायत करते थे कि दंड देकर परमेश्वर अन्याय का प्रदर्शन कर रहा है। उसने सबको एक साथ दंड दिया है। बंदियों में कुछ अच्छे लोग भी थे, फिर भी वे दंड पाए। यहेजकेल 33 उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। यह पद किसी के उद्धार से वंचित होने की बात नहीं करती है। परमेश्वर कह रहा है कि यदि उसकी संतान पाप में पड़े तो वह उसे दंड देगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय के 31 पद में पौलुस भी यही कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 16 पद में परमेश्वर कहता है कि एक पाप मृत्यु लाता है। वह परमेश्वर की संतान के विषय में कहता है कि वह कैसी मृत्यु के बारे में कह रहा है। जी हाँ, वह शारीरिक मृत्यु के बारे में कह रहा है। कुछ विश्वासियों के लिए पाप का दंड मृत्यु है। मुझे अचंभा होता है कि अनेक विश्वासी परमेश्वर के अनुशासन को समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग प्रभु की सेवा में हैं, परंतु उन्नति नहीं कर पाते हैं। वे अधिकाधिक उधार में दबते चले जाते हैं। आप सोचेंगे कि परमेश्वर का संदेश ऊंचे स्वर में और स्पष्ट सुनाई देगा कि परमेश्वर दंड देने वाला है। वे जो कर रहे हैं वह परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। यहेजकेल के पुस्तक 33 अध्याय के 19 पद में हम पढ़ते हैं, जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। परमेश्वर जो भी करता है उसमें वह न्यायी है। यदि दुष्ट भी परमेश्वर की ओर फिरे तो वह उसे उद्धार देगा। यहेजकेल 33 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है, तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं, हे इसराइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। मेरे मित्रों, भक्त जन भी बंधुआई में ले जाए गए थे। परमेश्वर में श्रद्धा रखने वाले भी अभक्तों के समान बंधुआई में ले जाए गए थे, और वे शिकायत कर रहे थे कि ऐसा प्रतीत होता है परमेश्वर अन्यायी है। हमें भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमारी सरकार के कारण हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है। हमारी पहचान हमारे देश से है। इसी प्रकार इसराइल के भक्त जनों की पहचान भी देश के साथ ही थी, परंतु इससे भी बढ़कर कुछ था। देखिए कि परमेश्वर क्या कहता है, हे इसराइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा, अर्थात हर एक इसराइली का न्याय किया जाएगा। मेरे प्रियो, आप जो भी हैं, एक दिन आपको परमेश्वर के समक्ष न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपके पापों का न्याय होगा, परंतु आप उद्धार से वंचित नहीं होंगे। परंतु यदि आप खोए हुए हैं तो आपको परमेश्वर पर कोई अधिकार नहीं है। पहली पत्री अध्याय 3:12 में पत्रस स्पष्ट रूप से कहता है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि वह दुष्ट की प्रार्थना नहीं सुनता है, वह कहता है कि वह धर्मी जन की प्रार्थना सुनता है। इसका अर्थ है कि वह अधर्मी की प्रार्थना सुनने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु यदि वह उद्धार के लिए पुकारे तो परमेश्वर अवश्य सुनेगा। यहां मुद्दे की बात तो यह है कि परमेश्वर पर उद्धार से रहित मनुष्य का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि आप किसी उद्धार से रहित मनुष्य से सुने, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होने देता है, तो आप जान लें कि उसे परमेश्वर की दया पर कोई अधिकार नहीं है। जी हां, खोए हुए संसार को दंड देने में परमेश्वर न्यायी है। हम कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं कि यह संसार परमेश्वर का ही है और हम इस संसार में रहते हैं तो हम भी उसी के हैं। आगे हम देखते हैं कि नगर ले लिया गया है। यहेजकेल 33 अध्याय के 21 पद में लिखा है, फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया। यहेजकेल तो पहले ही कह चुका था कि यरूशलेम उजड़ जाएगा। जब इस मनुष्य ने आकर समाचार सुनाया कि यरूशलेम ध्वंस कर दिया गया है, तब वे सब अवाक रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसी दिन यहेजकेल की पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी। परमेश्वर ने उससे कहा, अपनी पत्नी की मृत्यु पर विलाप मत कर, मैं चाहता हूं कि ये लोग जान ले कि मैंने उनके नगर को त्याग दिया है। वे सोचते हैं कि मैं यरूशलेम के बिना नहीं रह सकता, वे सोचते हैं कि मैं यरूशलेम नष्ट नहीं करूंगा, वे विश्वास नहीं करते हैं कि मैं पाप का दंड देने वाला परमेश्वर हूं। मैं अवश्य दंड दूंगा, अतः अपनी पत्नी के लिए विलाप मत कर। उन्हें बोध होने दे कि उनके पाप के कारण यरूशलेम उजाड़ा गया है, वह नगर ले लिया गया है। यहेजकेल 33 उसके 22 पद में आगे लिखा है, उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया, अतः मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर गूंगा ना रहा। मेरे मित्रों, अध्याय 24 के अंत में परमेश्वर ने यहेजकेल पर प्रकट कर दिया था कि यरूशलेम हत्यारा नगर नाश किया जाएगा। उसके बाद अध्याय 25 से 33 तक परमेश्वर ने उसे यरूशलेम संबंधित कोई भविष्यवाणी का वचन नहीं दिया था। उसने उसे पड़ोसी राज्यों के संबंध में संदेश दिया। अब यहां अध्याय 33 में परमेश्वर यहेजकेल को यरूशलेम के बारे में मुक बना नहीं रहने देना चाहता है। वह कहता है, मेरे पास तेरे लिए यरूशलेम संबंधित भविष्यवाणियों का वचन है। यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इसराइल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं, अब्राहम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। इसराइल की प्रजा अब स्मरण करती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे संभाला था। वह तो एक ही था और ये असंख्य हैं, परंतु वे चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी वैसे ही संभाले। वे भूल रहे हैं कि उनमें और अब्राहम में बहुत अंतर है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। यहेजकेल 33 अध्याय के 25 पद में लिखा है, इस कारण तो उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की ओर दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें वह देश लेने नहीं दूंगा। मैंने अन्य जातियों को उनके पाप के कारण वहां से निकाला और तुम वही काम करते हो जो वे पहले करते थे। यहेजकेल 33 के 28 पद में हम पढ़ते हैं, मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और उसके बल का घमंड जाता रहेगा और इसराइल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न चलेगा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं अपने कुछ अच्छे पादरी मित्रों के समान इसराइल के लिए पुलकित नहीं हो उठता हूँ। जब वे वहां जाते हैं तो उन्माद से भर जाते हैं, कुछ तो ऐसा करने लगते हैं कि आप सोचेंगे कि वे नशे में हैं। वे कहते हैं, ओह उस देश को देखना कैसा मनोहरकारी है, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि वह देश आज पूरी तरह से उजड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दंड दिया है। वहां पानी की कमी है, थोड़ा सा भी पानी वहां डाल दें और वह गुलाब की तरह खिल उठती है। यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। वहां की प्रजा ही नहीं, भूमि भी परमेश्वर के दंड की भागी है। यहेजकेल 33 के 30 पद में लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे दहल गए हैं और अब यहेजकेल का वचन सुनने को वे तैयार हैं, परंतु करेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। यहेजकेल 33 के 31 पद में हम पढ़ते हैं, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। ऊपर से तो वे परमेश्वर की ओर फिरना चाहते हैं, वे परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं, परंतु मन से करना नहीं चाहते। वे आज के उन मसीही जनों के समान हैं जो आराधना में जाकर अच्छा उपदेश सुनना चाहते हैं, परंतु जो वे सुनते हैं उसके अनुसार अपना जीवन बदलना नहीं चाहते। याकूब की पत्री अति व्यवहारिक है। वह कहता है, याकूब की पत्री 1:22 पद में, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर इन बंधुआई में आए इसराइलियों के लिए यहेजकेल से यही कहता है, तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मेरे श्रोता मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का है। मैं यह नहीं जानता कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम सुनेंगे लेकिन नहीं सुन रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अपने मन को जांचें। यहाँ इसराइलियों के जीवन से हम इस बात को देख रहे हैं कि वे परमेश्वर के पास आना तो चाहते हैं, लेकिन उसके आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते हैं। आज कई मसीही परिवार में माता पिता और बच्चों के जीवन में ये बातें पाई जाती है। आज आपके लिए परमेश्वर का वचन है कि आप अपने जीवन को प्रभु के निकटता में लाएं और ठीक करें, अन्यथा निश्चय ही आप प्रभु के दंड के भागी बनेंगे। मेरे मित्रों, जैसा कि हमने सुना और जाना है कि परमेश्वर दंड देने से प्रसन्न नहीं होता है। वह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति बचाया जाए। वह आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप भी बचाए जाएं। क्यों ना आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें और देखें कि हम कहाँ हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं या नहीं चलते हैं? यदि नहीं, तो आज से हम चलने की कोशिश करें, सच्चाई को और निकटता से ढूंढने और देखने का प्रयत्न करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ढूंढते हैं वे पाते हैं, आज आप प्रभु के पास आए और प्रभु आपको अवश्य ही सहायता प्रदान करेंगे। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सभी श्रोता भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। लहू बहा दिया कि तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले। ए मेरे बेटे दूर दूर क्यों, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। मेरे बेटे मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं। मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं। आ मेरे पास आ, मुझसे न दूर जा, मैं प्यार करता।
प्यार करता तुझे ए मेरे बेटे, दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के